एक भगवान उसको मन में विराजमान करें। उसके लिए आप सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि मन में भगवान आकर बस जाए और भागवत के शब्दों के द्वारा भगवान आपके हृदय में प्रविष्ट हो, अंतःकरण को शुद्ध करे और जो स्वाभाविक कृष्ण प्रेम हृदय में सबके जन्म से सिद्ध पड़ा है वो प्रकट हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यम्
नरं चैव नरोत्तमम्।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नन्दनाय च नन्द गोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द। श्री अद्वैत गदाधरा श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
राम राम
हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है दूसरे दिन आज मिलानु हाइट सूरत में भागवत के सत्संग में। मकर संक्रांति के पुण्य दिन के ऊपर श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंद से महाराज भरत के चरित्र का श्रवण करने का हमने संकल्प किया था और इसके अंतर्गत आज सुबह भी चर्चा हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान हरे कृष्ण हरे राम संस्था की ओर से परम पूज्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभिचरणार भक्तिवेदान स्वामी श्री प्रभुपाद की अनुकंपा से ये दुर्लभ भागवत सरलता से उपलब्ध है और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा में इसको अनुवादित करके पूरे विश्व के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं तो भागवत हिंदी भाषा में तो हमको मिल जाती है, संस्कृत और हिंदुस्तान के अन्य भाषाओं में तो मिल सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा के अंदर प्रभुपाद ने जो हजारों घंटे तपस्या करके जो विश्व को भागवत का दर्शन कराया है, जिससे पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भावना अमृत का संदेश जो पहुंच रहा है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत संस्कृति और भारत वर्ष के भागवत सिद्धांत की। क्योंकि भगवान सबके हैं तो भगवान का संदेश भी सबको मिलना चाहिए, भगवान सबके हैं तो भगवान का संदेश भी सबके लिए होना चाहिए। इसलिए ये दृष्टिकोण से इस बड़ी उदारता के साथ इसको विश्व भर के लोगों को उनकी भाषा में इसको अनुवादित करके देना, ये कर्तव्य महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाया है इस्कान के संस्थापक आचार्य श्री भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने। कल ये चर्चा हुई थी कि भारतवर्ष का नाम महाराज भरत के पीछे पड़ा। महाराज भरत ऋषभदेव के बड़े बेटे थे, ऋषभदेव के और 9 बेटे 9 द्वीपों के राजा हुए, 10 शासक बने, क्षत्रिय बने। 9 योगेंद्र के नाम से महान भागवत धर्म के प्रचारक बने, जिनके प्रचार का वर्णन नारद जी करने लगे। और उनके नारद जी प्रचार किसको करने लगे? उनकी शिक्षा का, भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव को द्वारका में वसुदेव को नारद जी बैठकर नव योगेंद्र की शिक्षा बताने लगे। ये ऋषभदेव के पुत्र 9 और बड़े महान योगेश्वर हुए और 81 पुत्र उनके बहुत बड़े प्रकांड पंडित हुए। तो इससे सुबह ये सिद्धांत स्थापित हुआ था कि जन्म से नहीं अपने कर्म से वर्ण बनता है। क्षत्रिय के पुत्र ब्राह्मण भी बने, शासक भी बने, तो अपने कर्म के आधार के ऊपर उन्होंने जो कार्य किया वैसे उनको धर्म ने और शास्त्र ने माना। तो वर्ण जो होता है भगवद गीता के अनुसार कर्म से होता है और गुण से होता है, जन्म से नहीं होता। ये ठीक इस दर्शन मिलता है इस श्लोक में कि महाराज ऋषभदेव तो क्षत्रिय हैं लेकिन उनके कुछ पुत्र राजा हुए और जो क्षत्रिय बने बाकी ब्राह्मण बने और कुछ ब्राह्मणों से भी ऊपर भागवत धर्म के प्रचारक बने। और फिर इस बात के ऊपर चर्चा आगे ऐसे चली कि महाराज ऋषभदेव ने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने पुत्रों को बहुत बड़े साधुओं के समाज में गंगा जी के तट के ऊपर ब्रह्मवर्त में उपदेश दिया। तो संकेत से ये मिलता है कि हर पिता का धर्म है कि अपने संतान को सत उपदेश दे। और उस उपदेश के अंतर्गत सुबह पहले श्लोक के ऊपर चर्चा हुई थी कि महाराज ऋषभदेव भरत को लक्षित करके बड़े बेटे को और 100 बेटों को भी साथ बिठाकर, भरत को आगे बिठाकर ऋषियों के समाज के बीच में, साधुओं के समाज के बीच में शिक्षा देने लगे। और ये शिक्षा महाराज भरत के अंतर्गत हम सब भारतवर्ष के सदस्यों के लिए है। और उसके पहले श्लोक में महाराज भरत को ये शिक्षा दी गई ऋषभदेव के द्वारा, ये शरीर भोग के लिए नहीं मिला है, भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। मानव शरीर, मानव शरीर भोग के लिए नहीं है। भोग तो बाकी 84 लाख योनियों में है ही है, लेकिन मानव जन्म भोग के लिए नहीं है। ये महाराज ऋषभदेव भगवान कह रहे हैं और राजा महाराज भरत को कह रहे हैं कि मानव जन्म भोग के लिए नहीं, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, इंद्रियों को संयम में रखने के लिए है। भोग तो पशु योनि में उपलब्ध है। आप समझते हो, भोग से सुख मिलता है, भोग से केवल रोग मिलता है। भोग से रोग मिलता है, सुख कैसे मिलता है पूछा जाए तो, तब ऋषभदेव महाराज कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का, ये मेरे बच्चों दिव्य तपस्या करो, इससे क्या मिलेगा, ब्रह्म सुख मिलेगा। ब्रह्म सुख मतलब आत्मा का आनंद। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मान सोचति न कांक्षति, भगवद गीता में कहा ब्रह्म का सुख ऐसा है जिसको कोई चिंता संसार की नहीं। तो आत्मा का सुख, ब्रह्म का सुख कैसा है, समाप्त होता है कभी, क्षणक है नहीं, क्षणक नहीं है, अनंतम ब्रह्म सौख्यम अनंतम, वो अनंत है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, वो तो आनंद ऐसा है जो एक एक पग पग के ऊपर बढ़ता रहता है, कभी कम नहीं होता। तो ऐसे सुख के लिए मेरे बेटों प्रयास करना, तुझ सुख के पीछे मानव जन्म को व्यर्थ मत गवाना। ये पिताजी अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, और पिता भगवान है साक्षात, और पुत्र इस भारतवर्ष का एक छत्र राजा है। अब तप, दिव्य तप करो, साधारण तपस्या नहीं। इसके ऊपर सुबह चर्चा हुई थी, तपस्या तो हम सब लोग करते हैं, सुबह से शाम तक कठिन कठिन परिश्रम करते, पैसा कमाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन ये तपस्या दिव्य तपस्या नहीं है। ये तपस्या शरीर के सुख के लिए है, शरीर के संबंधियों के सुख के लिए है। दिव्य तपस्या का मतलब आत्म आनंद के लिए अथवा भगवत प्राप्ति के लिए दिव्य तपस्या होती है। तो तपो दिव्यम, ये दिव्यम शब्द महत्वपूर्ण है श्लोक में। तपस्या तो सबको करनी ही पड़ती है संसार में, बगैर तपस्या तो दो रोटी भी नहीं पकती है, बगैर तपस्या के तो रोटी खाना भी संभव नहीं है, रोटी खाने में भी तपस्या लगती है। कभी आपको हमने बताया था रोटी खाने में पसीना होता है, बताया था कभी नहीं? राजस्थान के मई के महीने में राजस्थान में चूल्हे के ऊपर मां ने भोजन बनाया, रोटी बनाई और गरम गरम रोटी बनाई, और फिर रोटी लेकर बच्चों को खिलाई, और पति को खिलाने के लिए जब गई तो हाथ से ग्रास दे रही है मुख में, एक सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से पंखा चला रही है, पतिदेव को पसीना आ रहा है, पूछा गर्मी में पकाई मैंने, खिला मैं रही हूं, पंखा मैं झेल रही हूं, आपको पसीना क्यों आ रहा है? तो पति ने जवाब दिया चबा तेरा बाप रहा है। तो चबाने में भी तो पसीना निकलता है ना, चबाना कोई आसान थोड़ी है उतना, तपस्या तो चबाने में भी होती है। हाँ नहीं, चबाना कोई आसान इतना नहीं। तो शास्त्र भगवान दे रहे हैं और फिर व्यास देव ने इसको लिखित रूप में दे दिया अपने शिष्यों के द्वारा। दूर दूर से साधु संत आके उसको बोलने के लिए 2 घंटे परिश्रम करते हैं। आपको बैठ के सुनने में भी तपस्या होगी, पसीना आपको भी थोड़ा होगा, फिर भी सुनना भी इतना आसान नहीं है। सब कुछ उपलब्धि पहले से है, फिर भी बैठना मुश्किल है। तो ये दिव्य तपस्या है, ये दिव्य तपस्या है, ये तपस्या अनंत सुख को देगी। ये कैसा फायदा देगी, भगवद गीता में इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयातो। ये जो 1 घंटा आप यहां बैठे हुए हो, भगवान के भागवत का श्रवण कर रहे हो, कृष्ण कथा सुन रहे हो, कभी कोई संकट का वेला आया तब ये आपका एक घंटा उस वक्त आपकी रक्षा करेगा। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। उस समय ये आपका जो सत्कर्म है, ये जो पुण्य कर्म है, जो ये भक्ति का आपका जो भाव है, ये आपकी रक्षा करेगा। जैसे जैसे अनजाने में बेटे के नाम नारायण के उच्चारण से अजामिल का मौत के जम के दूतों के फंदे डालने के बाद भी वो एक नाम उनकी रक्षा कर पाया और उसको मौत से एक और मौका मिल गया बच के अपने जीवन को सुधारने का, मौत से बच गया। तो ये थोड़ी सी तपस्या बहुत बड़ा लाभ देने वाली है, इसलिए तपस्या का जीवन आनंद का जीवन है, भोग का जीवन रोग का जीवन है, ये मान लेना चाहिए। तो तपस्या कैसे करें, तो दूसरे श्लोक में ऋषभदेव कहते हैं, क्या है माइक दे दो इनको, गोस्वामी जी को माइक दीजिए। तपस्या कैसे करनी चाहिए उसका मार्ग बताते हैं। इस दुनिया में एक लोग तपस्या के ऊपर चलते हैं, उनका मार्ग क्या है, और दूसरे लोग अपनी मनमानी करते हैं, उनका परिणाम क्या है। महत सेवा द्वारम आहो विमुक्ति। साधुओं के संग में शास्त्र का श्रवण करना बंधन से मुक्त होने का रास्ता है। तमोद्वार मतलब अंधकार में नरक में जाने का रास्ता क्या है, भोग की परिकाष्ठा। नहीं 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 नहीं, भोग की परिकाष्ठा क्या है दुनिया के अंदर, आपके सूरत शहर में बड़े बड़े एडवर्टाइज के बोर्ड लगे हुए हैं ना सामानों के, उसके ऊपर किसके फोटो ज्यादा छपे होते हैं, हाँ हाँ जी हाँ, वो फीमेल लड़कियों के बोल रही है, सच्चा है झूठ बोल रही है, फिल्म स्टार की लड़कियों के होते हैं कि नहीं, लिखा है योशी योशी ताम। नरक के ऊपर जाने नरक में जाने के लिए स्त्री भोगियों का संग अथवा उनका ये चित्र लगाना नरक का सीधा सा रास्ता है, एक भागवत लिख रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए नरक में जाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, बेईमानी करनी पड़ती है, पशु हत्या करनी पड़ती है, ऐसे बदमाशी के फोटो लगाने पड़ते हैं, तब आदमी नरक में जाता है। और भगवान के पास जाने के लिए कुछ भी नहीं करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब लोग इतना परिश्रम करके नरक में जाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को कभी बहुत बड़ा आंदोलन चलाना चाहिए कि हमारे किसी भी स्त्री का फोटो ऐसे बाजार के अंदर ऐसे टांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो मातृशक्ति का अपमान है। लेकिन इसी को लक्षित करके और दुनिया धंधा कर रही है और क्या कर रही है, इसका कोई और तो उद्देश्य है क्या, और वो भी भोग की सारी बातें। तो ये शब्द नरक में जाने का रास्ता योशि योशिताम संगी, इसलिए चेतना महाप्रभु की शिक्षा है कि वैष्णव कौन है, एक तो असत संग त्याग और दूसरा स्त्री संगी, और ऐसे लोग जो लंपट है उनसे दूर रहे।
वीडियो चल रहा है बच्चों के लिए, आपके बच्चों को वहाँ भेजेंगे, वीडियो देखेंगे, वो लोग आराम करेंगे, जो जाएंगे अच्छी शिक्षा प्राप्त की गए हम, और आप लोग शांति में सुन रहे।
हरे कृष्ण। भगवत धाम जाने का बंधन से मुक्त होने का रास्ता है महत सेव्याम द्वारम। द्वारम का मतलब दरवाजा, हरिद्वार बोलते हैं, द्वार का मतलब दरवाजा, हरि का दरवाजा हरिद्वार। ऐसे भगवत धाम जाने का दरवाजा साधु संग, और नरक जाने का रास्ता जोश योशिताम स्त्री संगी। स्त्री संगी आखिर अर्थ ये नहीं है कि विवाहित ग्रस्त जीवन स्त्री संगी नहीं है, ये तो आश्रम है, इसको आश्रम कहते हैं। आश्रम का मतलब जहां विश्राम मिलता है, जहां भगवान का भजन होता है। लेकिन संसार में जो मानस इंसान के मस्तक को बंधन में डालने वाले ये चित्र हैं, ये चित्र कितने शक्तिशाली होते हैं लोगों के मन को भ्रष्ट करने में, इसका अंदाजा कभी लगा सकते हैं? बहुत भ्रष्ट करते हैं मन को ये चित्र केवल देखने से। और फिर ये चित्र बाहर आप नहीं भी जाओ तो आपके घर के अंदर एक आंख वाला असुर टेलीविजन उसके ऊपर दिखने में आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? नरक द्वारम, पैसा घर का खरीद कर खर्च करके, पहले तो 10,000 खर्च करते थे, अभी तो लाख रुपए वाला बड़ा एलसीडी वाला वो लाके, मतलब नरक भी सुपर फास्ट रोड से जाना चाहते हैं, कहीं कहीं ब्रेकर ना हो उसमें। नरक में जाने का भी हमारे को चाहिए एक्सप्रेस हाईवे। भागवत का श्लोक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी को संसार से कोई मतलब नहीं है, वो सत्य बोलते हैं जो भगवान ने कहा है। और फिर कहते हैं ये साधु बड़े दयालु होते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि स्त्री लंपट बड़े बदमाश होते हैं। इसका दूसरा अर्थ यही है, साधु बड़े दयालु होते हैं। क्या शब्द है देखिए, साधु समदर्श क्या है? महत्व महात्मा, महात जो महंत है, महात्मा है, समचित्त। समचित्त का मतलब ऐसे फोटू देखते ही नहीं, क्योंकि वहां समचित्त नहीं होगा, वहां भ्रमित चिंत हो जाएगा। समचित्त और शांत, वो शांत है। और ये चीजें अशांत करती है, करती है अशांत के नहीं करती है? अशांत करती है पक्का ना। तो शांत साधु है। और दूसरी लाइन है साधो हृदय, क्या है सुहृदय साधु, साधु सुहृदय मतलब आपके दिल पर दोस्त है। सुहृदय का मतलब दिल पर दोस्त, सो मतलब अपना, हृदय मतलब दिल। जो दिल पर दोस्त है उसको कहते साधु। कौन है? भगवान, साधु और मां, ये तीन सिर्फ सुहृदय होते हैं दुनिया में। सुहृदय की परिभाषा होती है जिससे हम प्रेम करते हैं उसको सुखी कैसे देखें, उसके सुख के लिए हम सब दुख उठाने को तैयार हैं, इसको बोलते हैं सुहृदय। एक तो भगवान है सुहृदय, जो सदा हमारे साथ रहते हैं, कभी किसी भी जूनी में हम चले जाएं भगवान हमको नहीं छोड़ते हैं। अज्ञात मित्र के रूप में, सुहृदय के रूप में हमारे हृदय में बैठते हैं परमात्मा के। दूसरी मां सुहृदय है, कष्ट सहकर भी अपने बच्चे को सुखी देखना चाहती है। स्वयं कष्ट सहेगी, रात सारी जागेगी, लेकिन बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहती है। जिससे प्रेम करते हैं उसको सुखी देखना, उसको सुहृद। और तीसरा सुहृद केवल साधु सदगुरु है, वो कष्ट सहकर भी अपने शिष्यों को, अपने प्रियजनों का सुख और उद्धार करना चाहते हैं। तो अगर भगवत धाम जाना है, बंधन से मुक्त होना है, पुत्रों ये क्यों शिक्षा दे रहे हैं? क्योंकि भरत को राजा बनना है, भारतवर्ष का राजा बनना है। अगर वो शिक्षित होगा और दीक्षित होगा तो प्रजा को सद्मार्ग के ऊपर चलाएगा, और ये नहीं कर पाएगा तो फिर राजा भक्षक हो जाएगा। इसलिए ऋषभदेव की शिक्षाओं का, इसके बाद का महत्वपूर्ण श्लोक ये है, उसको राजा होने का अधिकार नहीं है। 18वां श्लोक है, न सस्यात गुरुर, उसको गुरु होने का अधिकार नहीं है जो अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बचा सकता है। कन मन कुरु, तू मेरा शिष्य, मैं तेरा गुरु है? ये गुरु जी घूमते हुए अपने शिष्य के दुकान के ऊपर आए, शिष्य दुकान के ऊपर धंधा कर रहा है, जो आदमी आए ये कितने का है? बोला गुरु की कसम 25 का है, आपको 25 में दे रहा हूं। तो ये गुरु का कसम ये 28 का है, आपको 28 में दे रहा हूं। गुरु बैठा है, गुरु ने कहा सुबह से मैं तुम्हारे दुकान पे बैठा हूं और तुम कह रहे हो गुरु का कसम, गुरु का कसम। बोला गुरु जी इसी के लिए ये दक्षिणा देते हैं, और कौन सा आपने हमको भगवान का रास्ता बताया? आपके नाम से हमारा धंधा चल रहा है, आप कौन सा हमारे को हरी कथा सुनाने आते हो, आप दक्षिणा लेने आते हो, हम गुरु का कसम खा के अपना काम चला है। तो उसको गुरु होने का अधिकार नहीं है जो अपने शिष्य की ताड़ना न कर सके। क्या जरूरत है? ऋषभदेव कहेंगे मेरा बेटा पहले आप किसी हंस व्यक्ति को, परमहंस को गुरु गुरु बनाना शिक्षा दे रहा है। परमहंस किसी को गुरु बनाना, साधुओं के संग में रहना, बाप बेटों को कह रहा है कि आप जाके गुरु बनाओ, और बाप ही गुरु होता है बेटे का असल में। ये दूसरी शिक्षा है। उसको गुरु होने का अधिकार नहीं है जो अपने शिष्य को उद्धार नहीं कर सकता, उसको पिता होने का अधिकार नहीं है, पुत्र उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है जो पुत्र को सतमार्ग के ऊपर नहीं चला सकता। संतान है तो उसको सतमार्ग के चलाने की शिक्षा देना भी हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। हम उनको संभाल नहीं सकते हैं, शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो फिर संतान उत्पन्न करने का अधिकार ही नहीं है। और एक ये कारण है कि हम शिक्षा दे नहीं रहे हैं, इसलिए संतान उत्पन्न करना हमने बंद कर दिया कि हम शिक्षा देने के अधिकार दे ही नहीं रहे। शिक्षा कहां से देंगे? सुबह कह रहे थे, सुबह सवेरे निकलते हैं 2 घंटे सफर करके ट्रेन में, वो कोई लूनावाला से निकलता है, कोई पूना से निकलता है, बम्बे जाता है, 6 बजे निकल के जाता है, शाम को फिर 11 बजे घर पहुंचता है। बच्चे तो बाप को देखते ही नहीं है। संडे के दिन घर में बाप को देखा तो मां से पूछता है ये कौन मेहमान हमारे घर में आया है? अरे तेरा पिता है। बोला ये संडे का ही पिता है, बाकी कहां होता है? ये मंडे ट्यूसडे कहां होता है? अब ऐसी स्थिति है तो वो शिक्षा कहां से पिता देगा? वो तो रात को थका हुआ आके बस पड़ जाता है, उस वक्त बच्चे सोए होते हैं, और सुबह वो जब उठता है 9:30 बजे तब तक बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर उसका दिन ऐसे ही चालू हो जाता है। बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है, लेकिन ये तपस्या बच्चों को शिक्षा की तो नहीं है। ये बाप बेटों को बैठ के शिक्षा दे रहा है, ऐसे हम कभी शिक्षा बच्चों को देने का प्रयास किया है? हम नहीं दे सकते हैं, तो ये पढ़ के सुनाए कि देखो पहले इस तरीके से पिता अपने संतान को शिक्षा दिया करते थे। जो बुद्धिमान होगा वो समझ जाएगा कि ये मुझे शिक्षा दे रहा है। उसको पत्नी को ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, पति बनने का अधिकार नहीं है जो अपनी पत्नी को सद्मार्ग के ऊपर न चला सके। सद्मार्ग के ऊपर चलाने का मतलब जिस मार्ग से वो चल रहा है उसके पीछे उसकी पत्नी को अनुगामी होना है। उसको नहीं चला सकता है तो उसको पत्नी ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। इसलिए बहुत से लोग तलाक दे रहे हैं, क्योंकि अधिकार ही नहीं उन बदमाशों को, क्योंकि सुधार नहीं सकते तो कैसे चलाएंगे? भाई नहीं सुधार सके इसलिए तलाक दे रहे हैं, और क्या कारण है तलाक देने का? शिक्षा नहीं दे तो ये तलाक ज्यादा बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? डाइवोर्स का, क्योंकि दोनों शिक्षित नहीं है। ये स्थिति ऐसी बिगड़ती जा रही है। भारत का विवाह संस्कार कहलाता है, यज्ञ है, विवाह संस्कार कहा जाता है भारत में, और ये यज्ञ है। ये पवित्र करने के लिए, क्या पवित्र करने के लिए? आने वाली संतान को पवित्र विधि से दुनिया में लाना है, संबंध को पवित्र करना है। पाश्चात्य संस्कृति का विवाह भोग प्रदान है, भारतीय संस्कृति का विवाह प्रोजनी प्रदान है, कुल परंपरा और संस्कृति का प्रदान है। हमें कुल परंपराएं और संस्कृति हमारी चलनी चाहिए, हमारा विवाह भोग के लिए नहीं। विवाह के बाद पहले दिन सात फेरे खाते थे ना, उसके बाद हमने जो देखा है, पति के पीछे बंधी हुई पत्नी पल्लू से मंदिर में जाती थी और भगवान को दोनों प्रणाम करते थे, चरणामृत हम देते थे, हमारे मंदिर में आते थे, हमने आंखों से देखा हुआ है, और वहां से आशीर्वाद लेके फिर अपने घर जाते थे। अभी चोरी से उतर के हनीमून करने जाते हैं, मून के ऊपर जाते हैं, भगवान का घर छोड़ दिया, संस्कृति का सत्यानाश हो गया। विवाह का मतलब है अब हम बहुत बड़ा दायित्व, ये बड़ा यज्ञ हुआ है, भगवान से जाके प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा ये अब दंपत्य जीवन सुखमय हो और हम आगे परंपराओं को चला सके। एक मंदिर में नहीं, हमें मालूम है घर में गांव में सात मंदिर थे, हम सात मंदिरों में जाते थे, ऐसे पल्ले बंधे हुए गांव के, और पीछे सारे गांव की स्त्रियां गाती हुई जाती थी, आगे पुरुष चलते थे, तो सबको मालूम था कि ये इसकी पत्नी है और ये सब आशीर्वाद लेने जा रहे हैं मंदिरों में। वो जमाना चला गया, लेकिन हमने ये सब देखा है आंखों से। तो ये मर्यादा, तो जब तो मर्यादा में रहना अति आवश्यक है, नहीं तो उसको अधिकार नहीं, और उसको राजा बनने का अधिकार नहीं है जो प्रजा को सदमार्ग के ऊपर न चला सके। ये चार प्राकृतिक गुरु हैं, पिता अपने संतान का गुरु है, पति अपनी पत्नी का गुरु है, राजा प्रजा का गुरु है, और गुरु अपने शिष्य का गुरु है ही, और गुरु का इस यहां अर्थ वो भी है जो संसार की शिक्षा देता है, वो भी गुरु है। अब तो गुरु का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। पहले तो पढ़ाई होती ही गुरुकुल में थी, पहले पढ़ाई की डेफिनेशन क्या थी, सात वर्ष का बच्चा होता था, यज्ञोपयुक्त जनवरी डालते थे, उसका मतलब एडमिशन हुई गुरु की, इस एडमिशन के लिए कोई डोनेशन नहीं देना पड़ता था, मुफ्त का एडमिशन था, गुरु पढ़ाता था, एक रुपया नहीं लेता था, किताब भी और भोजन भी गुरु कराता था, माता पिता को यह चिंता नहीं थी कि बेटे को छोड़ के कौन आएगा, लेके कौन आएगा, कार्ड दिखाएंगे तब बेटा मिलेगा, ये परेशानी नहीं थी। अपना बेटा लेने जाओ, अगर कार्ड नहीं है तो नहीं देंगे, और कौन नहीं देगा, ड्राइवर नहीं देगा, इससे ज्यादा और कितना पतन हमारा होगा कि एक ड्राइवर हमारे बेटे का मालिक है और मैं बाप खड़ा हूं और मेरे को वो नहीं देगा अगर मेरे पास कार्ड नहीं है। ये अपने ऊपर हमने कैसे नियम लागू कर दी है। अरे गुरु के पास पढ़ाई के लिए बच्चे जाते थे, गुरु एक रुपया किसी से आज तक ने, जब शिक्षा दे के पूरी करेगा 25 साल का लड़का पढ़ के खा पी के गुरु के आश्रम में, तब गुरु दक्षिणा मांगता था, वो भी कहता तुम्हारे पास जो शक्ति है वो दे दो, और शक्ति के अनुसार जो चाहे वो दे दो, नहीं दे सकते हो तो आशीर्वाद गुरु की फिर भी आपके लिए है। ये शिक्षा की पद्धति जब थी तब शिष्य गुरु का सम्मान करते थे, क्योंकि खिलाता वो था, तो जो खिलाता है वो सिखाता है तो उसकी बात मानेंगे। अब इस गुरु को हम खिलाते हैं, ट्यूशन हम देते हैं गुरु को, तो गुरु क्यों सिखाएगा, और हम गुरु की बात क्यों मानेंगे, गुरु को हमकी बात मानना पड़ेगा। ये हालत आज है कि गुरु को शिष्य की बात और शिष्य के बाप की बात माननी पड़ेगी, न के गुरु की बात शिष्य को माननी पड़ेगी, स्थिति है कि नहीं। इसलिए एक भी आजकल का पढ़ा लिखा लड़का कोई सदाचारी या करेक्टर उसका मॉरलिटी कोई उसमें वो नहीं मिलेगा। आज के शिक्षितों में मॉरलिटी नहीं मिलेगी, क्यों, उसका यही कारण है। बच्चे कहते हैं पैसे देके पढ़ते हैं काहे के लिए तुम्हारी बात माने, किताब पढ़ाओ बस करो, पास होना है हमको बस, नंबर हमारे कितने आएंगे, चरित्र को कोई नहीं देखता है, नंबर को देखता है। तो यह शिक्षा की प्रणाली बदल गई, इसलिए गुरु का कुल कहते थे। कुल किसको कहते हैं, कुल का मतलब खानदान, कुल का मतलब परिवार। तो गुरु उन बच्चों को अपना परिवार मानता था, तो परिवार में आप अपने बच्चों को रोज सुबह भोजन देते पैसे लेते हैं क्या, बेटा तुम्हारे ब्रेकफास्ट का आज 21 रुपया और तुम्हारे लंच का 45 रुपया, ऐसे कोई पैसे लेते हो बच्चों से, अपने घर में आप लेते हो क्या पैसे, नहीं लेते हो ना, तो परिवार से पैसे थोड़ी लिए जाते। तो गुरु का परिवार हुआ करता था शिष्य। ये सारी संस्कृति का सत्यानाश कर दिया हम लोगों ने, क्यों कर दिया, क्योंकि हमने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया। हमारी मॉरलिटी, हमारी जो 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 हमारे चरित्र का पतन हुआ है, उसका एक ही कारण है कि हमने सदशास्त्र को पढ़ना और उसका अध्ययन करना और उनकी शिक्षा सदपुरुषों से लेना बंद कर दी। एक ही कारण है और कोई कारण नहीं। इसलिए अभी भी ये संदेश भागवत से आप ऋषभदेव के माध्यम से, भारत महाराज के माध्यम से ले लो, आप अपने बच्चों को चाहते हो कि चरित्रवान बने, तो निश्चित रूप से कुछ समय लगाओ और इस शास्त्रों को अपने घर में सिखाने का अभ्यास करो। कहां गए हमारी छोटी बच्चियां, हमारे साथ आ रही थी, चली गई कहां, अच्छा और फिर भरत महाराज को, फिर ऋषभदेव ने एक बार बहुत बड़ी शिक्षा दी है। मेरे बेटो ये आपका भाई भरत जो है ना, ये बड़ा भाई है, सब इसकी आज्ञा में रहना, और इसको अगर संतुष्ट किया तो मैं बाप अपने आप को समझूंगा कि आपने मुझे संतुष्ट किया है। बड़े का सम्मान पिता सिखाता था कि ये भरत महान है, बड़ा है, आप सब इसकी आज्ञा में रहना, और इसकी खुशी मेरी खुशी है। और ये शिक्षा देने के बाद ऋषभदेव महाराज भरत को राज देकर अपनी दिव्य और उनकी जो जीवनी है उसका वर्णन है भागवत में। अपन यहां से भरत महाराज के जीवन पे चलते हैं। आज महाराज भरत इस देश का राजा बना। बच्चे कहां गए चारों? हरे कृष्णा, आप वो श्लोक पढ़ के सुनाओ, माइक दे दो इनको, जल्दी करो। तो ऋषभदेव महाराज तो अपने तपस्या करने चले गए, कैसे कि इसका वर्णन अलग पूरा दो अध्यायों में भागवत में है। लेकिन महाराज भरत राजा बने हैं भारतवर्ष के, और लिखा है अपनी प्रजा को अपने बेटों के और पोतों के समान पालन करते थे, और उनके सुख के लिए बहुत सारे यज्ञ किए। सारी पृथ्वी के अकेले राजा थे, बड़े शब्द लिखा है जो इसके बाद वाला श्लोक है उसमें पहला ही शब्द है भरतो महाभागवत। भरतो महाभागवत, महाभागवत भरत था महाराज। क्यों महाभागवत कैसे बना? कि पिताजी की लिखा है, पिताजी की शिक्षा के अनुसार उसने शासन किया, इसलिए मान भागवत था। तो बड़ों की आज्ञा का पालन करने की मर्यादा यहां से मिलती है। बड़े जो कहते हैं वो अपने अनुभव से कहते हैं, बहुत बड़ा उनका एक्सपीरियंस है। आजकल के बच्चे कभी हमसे पूछते हैं, बच्चों को कहते हैं ये जरा मोबाइल हमको समझ में नहीं आता है, इसको ठीक करो, तो वो समझता है कि हम मूर्ख हैं, हमको मोबाइल चलाना नहीं आता है। लेकिन हमको दुनिया देखी है हमने, वो समझते हैं कि हमको ये नहीं, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, इसलिए हम मूर्ख हैं उनकी दृष्टि से। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि तुम्हारे को पैदा करने के बाद इतना बड़ा किया और ये कंप्यूटर तेरे को लेके मैंने दिया है, ये उनको मालूम नहीं। वो उन लोगों के पीछे ऐसे समझते हैं कि हम मूर्ख हैं। ये आजकल बच्चों का ये आपको क्या पता इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं, हमको ये पता है कि तुमने क्या है। क्यों नहीं मानते हैं बच्चे? इसलिए क्यों शिक्षा नहीं मिलती है उनको। इसलिए हम कहते हैं हमेशा के वो जो गुरुकुल से बच्चा जब वापस घर आता था तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये शिक्षा देके भेजते थे कि तुम्हारे घर में माता तुम्हारे लिए सेवा करना उसकी पूजने है, पिता तेरा पूजने है, गुरुजन तेरे पूजने है, कोई अतिथि घर में आए तो वो तेरे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और पूजने है। इसलिए होटल जो है और बाहर खाना पकाना ये भारत संस्कृति नहीं है। जहां अतिथि देवो भव कहा लिखा हुआ है, महाराज युधिष्ठिर के राज में 10,000 रसोई रोज भोजन बनाया करते थे। आने वाला कोई भी अतिथि अगर राज में आता है तो उनके लिए भोजनशाला में भोजन फ्री में मिलता था। ये होटल पाश्चात्य संस्कृति का है, हमारे पास ये होटल का कभी भारत संस्कृति में हर घर में एक अभी भी गेस्ट रूम बोलते हैं कि है कि नहीं है? अभी भी ये संस्कृति हमारे पास बची हुई है, कहीं भी एक एक गेस्ट रूम घर में होना चाहिए। बच्चे इनको माइक दे दें, माँ दे दीजिए। ये बच्चे लोग हम आपको कह रहे थे क्योंकि स्कूल में कोई नहीं पढ़ाते हैं इसलिए कुछ माता पिताओं को, हाँ बेटा बुक को छोड़िए, ऐसे एक दो जो आते हैं वो पढ़ लीजिए, नहीं आता जिनको आता है वो, नहीं तो हम साथ में बोलेंगे। विद्या वो जो कंठ में, किताब घर से ले जाके जाओगे तब तक काम नहीं चलेगा। हरे कृष्णा, बच्चे बोलो, बोलिए, शुरू कीजिए। आपूर्यमाण बोली परमासी बलवद्दृढ़ं ये भी माइक ले लो। जगत तपसाम सर्वलोकमहेश्वरं सहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम् आपूर्यमाणं मच प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रवशन्ति स हरि बोल। चलो पूरी आपका खेल। ये इन बच्चों की हमारी तरफ से इम्यूनाइजेशन है, इनको टीके लगा दिए हैं हमने भागवत के और भगवत गीता के श्लोकों के। ये शिक्षा आपको कैसे लगे? ये बच्चे आपके ऐसे पढ़े कैसे लगते हैं आपको? हाँ, ये पढ़े अच्छा लगता है कि डमटी डमटी एमटी कमटी चमटी बैठे वो अच्छा लगता है? कौन सा वाला अच्छा लगता है? लेकिन ये कहीं कोई सिखाता है क्या? और ये हमने मुफ्त में सिखाए और वहां पैसे देके तब भी घर में आते डमटी डमटी करता है, तो कौन सी शिक्षा ठीक है? अब चाहते हैं कि बच्चों में संस्कार आए, तो हम कह रहे थे ये होटल भारत संस्कृति नहीं है। हर घर में गेस्ट हाउस होना, पुराने गांव के अंदर तो शहर के अंदर धर्मशालाएं होती थी कि आके सब रहें और उसमें भोजन का व्यवस्था थी। अभी आज भी वृंदावन में हरिद्वार में अथवा किसी धर्म के स्थान में जाओगे तो सेठों की धर्मशालाएं अभी भी चलती हैं, जहां रहना भी फ्री है खाना भी फ्री है। आपकी इच्छा हो तो दे जाओ, नहीं तो नहीं दे जाओ। आज भी चलती है, हजारों लोग भोजन करते हैं, आज भी मिलता है। ये संस्कृति हमारी थी, तो ये संस्कृति हमारी आस्ते आस्ते समाप्त होने लगी है। तो ये संस्कृति महत्वपूर्ण थी, भारत की संस्कृति बहुत रिच कल्चर था। वो सारा कल्चर पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण के कारण और धर्म ग्रंथों के अध्ययन न करने के कारण बहुत पतन की ओर जा रहा है। तो महाराज भरत राजा हुए, विवाह भी किया पांच जनी से, विश्वरूप की पुत्री के साथ महाराज भरत का विवाह हुआ, उसके पुत्र संतान हुए, पुत्रों को उन्होंने राज दिया और सारे राजपाट को छोड़कर गंडकी नदी के किनारे के ऊपर जहां से सालंगराम मिलते हैं पुनः आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि जिसने शिक्षा ग्रहण की है अपने पिता से साधुओं के संग में, वो संसार के भोग में सदा के लिए लिप्त होकर नहीं रह सकता। राजपाट को छोड़ दिया एक समय के ऊपर, बच्चों को दे दिया कि आप राज संभालो और हम तपस्या करने कहां जाएंगे? गंगा के किनारे बैठेंगे हरिद्वार में, साधुओं के संग में जाकर बैठेंगे। क्योंकि एक समय कितने साल राज किया अपने भोग के हिसाब से, एक हजार इंटू दस हजार 1 करोड़ साल राज किया, लेकिन फिर राज को छोड़ दिया, बच्चों को दे दिया और तपस्या करने के लिए गंडकी के किनारे जहां सालंगराम मिलती है और जहां भगवान हरि साक्षात मिलता है भक्तों को। भाई हरिद्वार कहते हैं जहां हरि मिलता है, जहां भगवान मिलता है वहां जाना चाहिए। कहां भगवान सदा रहता है? एक बार वृंदावन परिचय जय एक पदम न गच्छामि, वृंदावन छोड़ के एक कदम में बाहर नहीं जाता हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जहां सदा के लिए भगवान रहते हैं, एक तो साधु वृंदावन का साधु है गोस्वामी हमारे राधा रमन के पुष्पांग, ये वृंदावन में रहते हैं। ऐसे कोई साधु पुराने जमाने में घूमता फिरता पाश्चात्य देशों का प्रचार करता हुआ अमेरिका चला गया, और अमेरिका में भी एक बहुत बड़े वहां के जो ईसाइयों का पादरी था, जो पोप था, उसके घर चला गया मिलने। साधु साधु को ढूंढ के निकालेगा और दुनिया वाला जाएगा तो अपने जैसे आदमी को ढूंढ के निकालेगा। तो उस बड़े पोप के घर के अंदर जाके बैठा तो 3 टेलीफोन पड़े थे 1, 2, 3 लाइन में। बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई तो 3 टेलीफोन क्यों? बोला ये जो लाल वाला है ना, और ये जो हरा वाला है, और ये काला वाला है। काले वाले से तो हम अपने ही देश के अंदर जो काला धंधा करते हैं उसी के लिए यूज करते हैं, ये तो अपने लोकल एसटीडी है, और जो ये हरे वाला है ये आईएसडी है। तो बोला ये लाल, बोला ये भगवान से बात करने के लिए, भगवान से बात करने के लिए है। भाई साधु के पास तो भगवान से बात करने के लिए भी कोई साधन होना चाहिए ना। तो ये तो बेचारा ब्रजवासी था, इसके मन में आया कितना समय हो गया कृष्ण से बिछड़े, उठाया फोन, लगाया वृंदावन, हे गोपाल कैसे हो, अपनी गैया कैसे हैं, अपनी मैया कैसे हैं, माखन ठीक चल रहा है, ग्वाल बाल ठीक हैं। वो इतना आनंद में बात कर रहा, बात 40 मिनट हो गई, बिल आया $500। तो ब्राह्मण था, ऐसे हाथ जेब में तो डाला, लेकिन जेब के अंदर जेब नीचे तो था ही कुछ नहीं, हाथ बाहर निकल सीधा बाहर आया। तो पोप ने कहा आप चिंता नहीं कीजिए, आप हमारे मेहमान हैं, जाइए, पैसे की कोई बात नहीं। पोप घूमता हुआ दिल्ली आया, पूछा कि वृंदावन कहाँ है, बोला ये तो यहां से नजदीक है। वो पंडित जी के घर में आया, वहां से लौट के पंडित जी ने भी 3 फोन रख दी, लेकिन काला नहीं रखा, पीला रखा, कि हम सबके पीले हाथ करते हैं आप भले काला मुंह करो, हम पीले हाथ करते हैं। पूछा ये आपके फोन, बोला ये पीला फोन हमारा अपने देश के लिए, हरा हम आपकी तरह आईएसडी है, और ये लाल भगवान के लिए। अब इसने कहा $500 मेरे खर्च कराए थे, मैं भी करता हूं भगवान से बात। उठाया फोन, बात शुरू हो गई, गार्ड इन दी हेवन हाउ इज मेरी, जो कुछ उसने पूछना था पूछा, उसने 40 के बजाय 45 मिनट बात की, और फोन नीचे रखा, 2 रुपया बिल आया। बोला व्हाट इज दिस, बोला दिस लोकल कार, यही लेता है भगवान ये तो लोकल कार है, भगवान तो यही रहते हैं, कहीं और ढूंढने जाने की क्या जरूरत है इसको वो तो आपकी कार कैसे कितनी दूर होती है। तो कहां जाके बैठा महाराज भरत, पुल आश्रम में गंडकी के किनारे, जहां भगवान हरि साक्षात मिलते हैं। तो तीर्थों में भगवान साक्षात मिलते हैं, क्योंकि साधु संत वहां रहते हैं, और भगवान साधु संतों के माध्यम से तीर्थों में मिलते हैं। महाराज वहां, महाराज बहुत सुंदर थे, उनके घुंघरेले बाल थे, लेकिन 3 बार नहाते थे भीगे हुए बाल, और अपनी तपस्या और सूर्य उपासना करते थे। सुबह उठ के लिखा है गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद में, उससे सूर्य की प्रार्थना किया करते थे। आदित्य सुबह प्रार्थना करें, अच्छी तरह से तपस्या करने शुरू कर दिया, फल फूल वन से लाए, भगवान को भोग लगाए, और इस तरीके से बहुत तपस्या के अपना जीवन राजपाट छोड़ के आए और तपस्या करना शुरू कर दी। तो ये महत्वपूर्ण है कि एक समय के ऊपर हमको भी रिटायर होकर, आपको गिनती आती है गोवर्धन 40 के बाद गिनती करो आगे, आप बोलो 40 के बाद क्या है, 41 बोलो, अभी आस है, मतलब कुछ और मिल सकता है, आस है मिलेगा। अब आगे जाइए 50 तक पहुंचिए, 50 के बाद पढ़ो 52 53 वन में जाओ 50 तक आस पूरी हुई, 51 वन में जाओ, 52 वन में जाओ, 53 वन में जाओ, 59 तक अगर वन में नहीं गए तो 60 लगेगी फिर लठ घर में लाठी घर के नहीं गए, 9 साल आपको चांस दिया जाता है, वन में जाओ, रिटायर हो जाओ, वृंदावन में बैठो, इन्वेस्टमेंट करके, यहां ये पिजियन हाउस, ये फ्लैट मत लो, एक एक घर वृंदावन में बना के रखो, जमुना के किनारे, हरिद्वार में गंगा के किनारे बना के रखो, कोई घर को जगन्नाथपुरी में घर बना के रखो समुद्र के किनारे, और वो इन्वेस्टमेंट आपकी रिटायरमेंट के समय भगवान के पास ले जाने के काम आएगी। ये इन्वेस्टमेंट पता नहीं कौन खा जाएगा, आपको कौन खाएगा क्या पता। तो इसलिए भगवान ने आपको धन दिया है, तो ऐसे स्थानों के ऊपर, इसलिए पुराने जमाने, आज भी आप जाएंगे तो वृंदावन में ये ग्वालियर के राजा का महल है, ये जो है वो भरतपुर के राजा का महल है, हर एक राजा का महल आज भी वृंदावन में बना हुआ है। ये राजा महाराज राजपाट छोड़ के एक एक महीना जाके वहां रहते थे, उनका महल अभी बना हुआ है सब। वो कहां का महल, वो बिहार के राजा का महल, क्या नाम है उसका, मुंगेर मंदिर, बिहार के राजा, मणिपुर के राजा का महल बना हुआ है,
प्रसन्नता है।
हर एक रजवाना अपना महल बनाता था वृंदावन में। ये इन्वेस्टमेंट आपकी परमानेंट इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो कर लो। इसे अगर वहां होगा घर तो मन करेगा जाएंगे, और जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा? भगवान के भक्तों का संग मिलेगा, तो निश्चित रूप से जाने अनजाने में अच्छा ही लाभ ही मिल जाएगा ना। तो ये अति आवश्यक है किसी भी तरीके से। भरत महाराज इस तरीके से ऐसे स्थान के ऊपर जाके रहने लगे, तपस्या करने लगे और साधु संग में रहने लगे। एक दिन की बात है, अध्याय पूरा दूसरा चला गया। एक दिन की बात है, नदी के किनारे के ऊपर नहा रहे थे सुबह अपने आसन के ऊपर बैठ के तपस्या के लिए, तो एक हिरण को देखा। गर्भवती हिरण थी। अचानक पास में कहीं शेर की धार सुनाई दी। शेर के धारने से हिरण भयभीत होकर इधर उधर देख के नदी के ऊपर से छलांग लगाई, और भय के कारण और छलांग के कारण उसका बच्चा नीचे नदी में गिरा, और गिरते ही हिरण गुफा में गिरी और उसके प्राण निकल गए। महाराज भरत के हृदय में दया का उदय हुआ। ये बच्चा अनाथ है और नदी में बहता हुआ जा रहा है, मर जाएगा। महाराज भरत ने उस बच्चे को उठा के निकाल लिया। दया सतोगुण की वृत्ति है, दया होना जरूरी है। लेकिन दया के बाद उसमें अगर आसक्ति हो जाए तो फिर रजोगुण हो जाएगा, और मोह हो जाए तो तमोगुण हो जाएगा। निकाल के छोड़ दो तो तुम्हारी दया ठीक है। दया सतोगुण की वृत्ति है, वो बाहर मन को फेंकती है। दया होनी जरूरी है, लेकिन दया ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। एक आदमी मंदिर में पंखा लगाया, पंखे के ऊपर तीनों परों के ऊपर नाम अपने परिवार का लिखाया, और मई के महीने में पंखा चल रहा था फुल स्पीड में। आया, बटन बंद किया, सबने बोला पसीना हो रहा है, बोला पहले नाम पढ़ो किसके हैं, बाद में हवा खाओ। पहले नाम पढ़ो फिर हवा खाओ। तो ये क्या है? ये तमोगुण और रजोगुण का दान हो गया। तमो दिखाने का है, और तमोगुण इसलिए कि दूसरों को दुख देके भी अपना नाम करना चाहता है कि तुम पसीना तुम्हारा भय तो भय, लेकिन पहले मेरा नाम पढ़ो फिर हवा खाओ। काम तो अच्छा किया, दया का किया था भाई, भले के लिए काम किया था। तो फिर उसके आसक्ति उसके अंदर बहुत बड़ी हो गई ना। तो आज उस हिरण के बच्चे को महाराज समझते ये तो मेरा शरणागत है, अब तो इसको खिलाएगा कौन, इसकी मां तो मर ही गई। तो खिलाने पिलाने का सारा काम करने लगे, और तो निश्चित रूप से अगर खिलाएगा पिलाएगा बच्चे उतना टाइम तो 24 घंटे ही रहेगा, तो उसके भजन का टाइम ही कम होता लगा ना। तो जो जब तब करता था वो कम होने लगा। फिर भी अभी जीव है उसमें, और छोटा सा हिरण बहुत सुंदर भी लग रहा था, और हिंदर में उसकी इतनी हिरण में आसक्ति हो गई जैसे बच्चे की उसको कभी चूम ले, कभी छाती के ऊपर लेके सो जाए। तो बच्चे से बहुत उनको प्रेम होने लगा, और अपने नेम आस्ते आस्ते में नेमों में त्रुटि होने लगी। ये तो हिरण में आसक्ति हो गई महाराज भरत को। उसका परिणाम तो आप सुनेंगे थोड़ी देर में। लेकिन आजकल के लोगों जो कुत्ते में आसक्ति जिनको जो चूमते रहते हैं, उनका क्या होगा? हिरण फिर भी सुंदर है पशुओं में, उसको कहते हैं, लेकिन ये कुत्ते बिल्ली को पालते हैं और साथ लेके घूमते हैं चूमते हैं, उनका क्या होगा? आसक्ति जिनकी हो जाती है। जब महाराज भरत इतना हिरण में आसक्त हो गया कि एक दिन हिरण दिखाई नहीं दिया तो बड़ा पागलों की तरह ऐसे कहने लगा मुझसे कोई अपराध हो गया कि हिरण मुझसे चली गई। चांद को देख के कहता चांद के अंदर हिरण चली गई कि मेरा चांद ने उसको शरण दे दिया है क्या? और इस तरीके से बड़ा विलाप करता हुआ जा रहा है, हिरण नहीं मिली, और वो किसी पहाड़ के ऊपर से हिरण के ध्यान में जाते हुए नीचे गिरे, प्राण निकल गए। ध्यान किसका किया? हिरण का किया। तो दूसरे जन्म में हिरण बन गए। तो इतनी आसक्ति हिरण में हो गई कि भजन भूल गया, राजपाट छोड़ के आए, अपने असली बच्चे छोड़ के आए जिनको गोद में खिलाना चाहिए, और गए आश्रम में, वह हिरण को अपने बच्चे की तरह प्रेम करने लगे। अरे प्रेम ही करना, अपने बच्चे थे पोते थे उनको लेके घूमते रहते, क्या फर्क पड़े? यहां आके हिरण को क्यों प्रेम करने लगे? बस इससे सिर्फ संकेत ये मिलता है, एक तो पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म होता है जो हमारा अंत में विचार होता है उसके आधार के ऊपर। ये सिद्धांत, इस भर्त चरित्र से एक सिद्धांत ये मिलता है कि पुनर्जन्म होता है, और उस जन्म का निर्माता हम स्वयं हैं, और वो जन्म होता है हमारी अंत समय की जो मति होती है उसके आधार पे, अंत मति सो गति। अंत मति का मतलब है लास्ट ब्रेथ, जो अंतिम सांस लेते हैं उस वक्त जो हमारे ध्यान में आया वही निश्चित रूप से हमको प्राप्त होगा। और अंत समय ध्यान किसका आएगा? जो हमने सारी उम्र जिसका अभ्यास किया होगा, अंत में उसी का ध्यान आएगा जो सारी उम्र हमारे दिमाग में रहा होगा। इसलिए हम अभ्यास करते हैं हरे कृष्ण जब तक अंत समय भगवान का नाम मुख से निकले, इसलिए अभ्यास करते हैं। रोज रोज क्यों करते हैं? क्योंकि अंत समय ये याद आना चाहिए। आपको कभी चोट लगती है तो क्या याद आता है? मां, हाँ, और मेरी मां यही कहते हैं ना, क्यों? कि उसने हर वक्त हमको दुख से बचाया था। जो हमको दुख से बचाता है वही याद आता है, और इसलिए भगवान अपने भक्तों को संकट से बचाते हैं। भवामी निचरात पार्थ मई आवेशक चेत सम, भवामी निचरात पार्थ, उनको देर नहीं लगाऊंगा, संसार सागरात, संसार सागर से मैं उसको पार ले जाऊंगा। तो जब ये विश्वास होता है तो भगवान के नाम में उतना प्रेम करना है कि अंत समय वो याद आए। और उसका अभ्यास क्या है? अभी कल अहमदाबाद परसों गए थे हम, कुछ भक्तों को देखने गए थे, विवाह हुआ था उस बच्ची का, और जामनगर में रिसेप्शन के बाद वापस आते रास्ते में आते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, चोटें लगी सबको। तो हमने पूछे, उनसे मिलने गए थे, देखने गए थे, भक्त है सारे। उन्होंने बोला जब गाड़ी को, गाड़ी डिवाइडर से लगी और ऐसे उल्टी हुई तो आपने क्या? उन्होंने बोला नरसिंहदेव भगवान। हमको बोला केवल नरसिंहदेव उस वक्त में याद आया। और उस एक्सीडेंट में गाड़ी तो उल्टी होके बिल्कुल ऐसे 120 की स्पीड में हो गई, एक छोटी बच्ची जितनी थी पतली सी, उसको तो खराश भी नहीं आई, कुछ भी नहीं लगा, प्रताप उसका नाम था, तो मक्खी की तरह मानो उड़ गई ऊपर से। वो जब हमारी गोद में बैठती है बोलते हैं पहाड़ के ऊपर चींटी कहां से आ गई, इतनी छोटी है वो, इतनी छोटी है बच्ची। और फिर जब जिसकी गाड़ी थी उसको एक फ्रैक्चर हुआ है, और दो माताएं थी उनको मामूली फ्रैक्चर है। तो हमने पूछा एक्सीडेंट तो हो गया लेकिन अंत में याद क्या आया? बोला उस वक्त हमने कहा नरसिंहदेव भगवान। इसका मतलब जो उन्होंने 8-10 साल से 2 साल से जो अभ्यास किया है उसका ये प्रिलिमिनरी पेपर में पास हो गए। एक होता ना, एक जो होता है ना 6 महीने 3 महीने वाला पेपर था तो मौत सामने, लेकिन उस वक्त भगवान याद आ गया तो नरसिंह जो है तो उसने रक्षा कर दी, ओके एक चांस मिल गया। तो ये से कभी भी चलते फिरते पांव में मोच भी आ जाए तो राम में से नाम निकल जाए, गोविंद नाम निकल जाए, करवट लेते हुए गोपाल का नाम निकल जाए तो समझो अभ्यास ठीक है। अंत मति सो गति, अंत समय किस चीज का ध्यान आएगा? जो सारी उम्र जिसका हमने ध्यान किया होगा। अंत में कैसे भगवान याद आ जाएगा यह संभव नहीं है, बहुत संभव नहीं, प्राय वही याद आती है जिससे प्रेम ज्यादा होगा। इसलिए अजामिल को नारायण याद आया क्योंकि छोटा बच्चा था उससे प्रेम था, या हिरण याद आया महाराज भरत को जो धर्मात्मा थे, और वहां एक पाप आत्मा ब्राह्मण था उसको अपने बेटे का नाम नारायण याद आया। अंत समय नारायण याद आया तो नारायण के दूत आए, और हिरण याद आई तो दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि महाराज भरत इतने बड़े महान, उनको हिरण के जन्म में क्यों जाना पड़ा? कर्मों के कारण नहीं जाना पड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी ये मानना है कि जो जो धाम में रहता है, द्वारका वृंदावन आदि में रहता है, वहां जिसके प्राण त्यागते हैं वो कर्म के अधीन नहीं होता है, वो तो भगवान के अधीन होता है, लेकिन वहां भी बदमाश रहते हैं, ऐसे नहीं रहते हैं। आजकल जितने तीर्थ स्थानों के अंदर लोग लुटेरे रहते हैं इतने तो शहरों में नहीं, ये सच है कि झूठ है? तो फिर वो मरेंगे कहां जाएंगे? ये इतने सारे बंदर कहां से आए वृंदावन में? मोटे मोटे सुअर घूम रहे हैं, कहां से आए? वही उनको एक जूनी बंदर सुअर आदि की मिलती है, उनको पता लगता है कि एक छोटी गलती के कारण देखो धाम में रह के हमने इतनी बड़ी गलती कर दी। उस जूनी में उनको वो भूलता नहीं, वृंदावन से बाहर नहीं जाते, और वहां से फिर महाराज भरत की तरह बड़ा अनुभव होता है और वापस लौटने का, जल्दी लौट आते हैं वहां से, नहीं तो वो नीचे से गिरना शुरू हो जाएगा। तो भगवान इनके कर्मों के अनुसार नहीं, लेकिन भगवान के नियम के अनुसार उनको थोड़ा सा ऐसा अनुभव कराया जाता है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है। जैसे कभी बच्चा जबरदस्ती जाके आग में हाथ डाला है तो माता पिता कहते ये जल जाएगा, तो हाथ पकड़ के आग के पास ले जाते हैं, जलने नहीं देते, ऐसे करता है, उसके बाद कभी नहीं जाएगा आग के पास। ये एक शिक्षा की शैली है। तो महाराज भरत हरण तो बने, हिरण तो बन गए, लेकिन जहां हिरण बने थे वहां से वापस पुले आश्रम आए जहां भक्ति करते थे। वो तो किसी पर्वत के तलहटी में हिरण बने थे बहुत दूर, लेकिन वहां से उनको अपनी पूर्व जन्म की सारी तपस्या याद थी। तो दूसरा सिद्धांत क्या स्थापित होता है, एक तो पुनर्जन्म होता है भरत चरित्र में, ये सभा पुनर्जन्म होता है अंत समय की मति के अनुसार, और दूसरा भगवान की हुई भक्ति अगर नीच जूनी में भी आदमी जाएगा तो नहीं भूलता है, हिरण की जूनी में भी भगवान की हुई भक्ति नाश नहीं हुई, हिरण की जूनी में भी महाराज भरत को अपने उस पुलय स्थान पुलय आश्रम गंडकी का किनारा और वो सारा वातावरण याद आया और पश्चाताप भी हुआ कि घर बार छोड़ के राज सिंहासन छोड़ के मैं तपस्या करते एक हिरण के बच्चे में इतना आसक्त हुआ कि मुझे हिरण बनना पड़ा। फिर हिरण के वही पुले आश्रम में रह के कोई साधुओं का संग किया, समय आने के ऊपर हिरण का शरीर छोड़ दिया। जब हिरण का शरीर छोड़ दिया तब उनको ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, सात आठ और भाई थे ब्राह्मण के पुत्र थे, और ये उनका एक और पुत्र हुआ और यहां भी इनका नाम भरत ही हुआ। तो जो तपस्या करता है उसको कहां जन्म मिलता है, भगवद गीता कहती है श्रीमताम सुचि नाम के हे योग भ्रष्टो अभिजायते, जो भक्ति करे भगवान का भजन करे और पूरा न कर पाए तो उसको कम से कम दूसरा जन्म मानव का किसी अच्छे घर में मिलता है। श्रीमताम मतलब धनी आदमी के घर में जन्म मिलता है, कमाने के लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, घर में बड़ा अपना मंदिर बना के भगवान का भजन कर सकता है। सुचि नाम श्रीमताम के है, सुचि नाम का मतलब पवित्र धन कमाया हुआ, बड़ा सेठ लेकिन काले धंधे वाले घर में जन्म नहीं होगा कि वहां जाए फिर बेईमानी शुरू करे। सुचि नाम श्रीमताम के, सुचि मतलब पवित्र। अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम, नहीं तो किसी योगी के घर में किसी साधु के घर में उसका जन्म होगा। तब लोग कभी ये प्रश्न पूछते हैं कि साधु तो सन्यासी होता है उसके घर में जन्म कैसे लेगा, उसने शादी नहीं की जन्म कैसे लेगा, तब कहते हैं गुरु का कुल होता है। अब हम सब जो इस्कान के भक्तों के रूप में प्रभुपाद के कुल में हमारा जन्म हो गया, ये जो जन्म है ये है। अथवा योगी नाम है वो कुले भगवती दीन भीम, ये भक्ति योगी भक्ति वेदांत के घर में ये भक्ति वेदांत के कुल इस्कान के अंदर हमारा जन्म हो गया। आपका दूसरी दीक्षा होती है तो उसको जन्म ही तो बोलते हैं दूसरा, तो हमारा जन्म कहाँ हुआ, बहुत बड़े महात्मा के कुल में, चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के कुल में हमारा जन्म हुआ। क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि हमने पहले अपना तपस्या किया हुआ है, पहले अभ्यास किया हुआ है तब ये हुआ है, नहीं तो नहीं हो सकता। फिर भी हमारा अगर दृढ़ता नहीं है और अपने जप को ठीक नहीं करते, नियम का पालन ठीक नहीं करते, तो महाराज भरत की तरह हमको चेतावनी दी जाती है कि किसी छोटे कारण से कहीं और पतन हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने एक भावार्थ में लिखा है, एक तात्पर्य में लिखा है कि भक्त को चाहे कितने भी जवाबदारियां हो अपने जप को नियम को नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हालत में। प्रभुपाद जी अपने एक दिन श्रुतकृति को जो उनका सेवक था उनको कहते हैं کہ جب میں گرستی تھا میرے پاس بہت زیادہ کام تھا, بچے پالنے تھے, کاروبار کرنا تھا, تب بھی میں مالا چار مالا صبح اٹھ کے پہلے جپتا تھا, چار مالا بھوجن سے پہلے, ایک بھوجن سے چار مالا, دوسرے بھوجن سے پہلے, اور چار مالا سونے سے پہلے 16 مالا تب بھی میں کرتا تھا, کیونکہ ٹائم ایک وقت نہیں نکال پاتا تھا. تو بھی اس یہ میرا فارمولا بنا کے میں نے رکھا تھا کہ میرے کو کام بہت زیادہ تو ایک وقت نہیں کرتا ہوں, تو بانٹ کے میں اس وقت بھی کرتا تھا, لیکن یہ نیم کبھی توڑا نہیں. جیسے جپ کرنا چھوڑ دیں گے تو مانو کہ پاؤں گپ میں پڑ گیا. جپ اور گپ دو چیزیں ہوتی ہیں, گپ کا مطلب کیچڑ کہتے ہیں, گپ کہتے ہیں ہم کیچڑ کو, مطلب پھر کیچڑ میں پھنس جاؤ گے. جب تک نام سمرن چلتا رہے گا تب بھگوان سرکشا کرتے رہیں گے. اس کو آپ نے تھوڑا ڈھیلا کر دیا تو دوسری طرف تو گرے ہوئے پہلے سے ہیں, گرنے کے لیے کچھ پریاس نہیں کرنا پڑتا ہے, وہ تو گرے ہوئے ہیں, اٹھنے کے لیے پریاس کرنا پڑتا ہے. ندی جہاں بہتی ہے تاپی, اس کے اندر لکڑی کچرا پھینک دو تو بھی بہ کے چلا جائے گا, نہیں پلاسٹک بہ کے چلی جائے گی, گدھا بھی مرا ہوا ڈالو تو بھی بہ کے چلا جائے گا, اس کو پریاس تھوڑی کرنا پڑے گا. لیکن الٹی طرف چلنے کا پریاس کرو گے تو محنت کرو گے تبھی جا سکو گے. تو سنسار تو نیچے ایسے سنسار ساگر کی ندی بہ رہی ہے, اس میں سبھی جا رہے ہیں, اس میں جانے کے لیے کچھ پریاس نہیں کرنا ہے, لیکن الٹی سمت میں جانا ہے تو بڑا محنت کرنی پڑے گی اور تھک جائیں گے اس میں. اور جب تھک جائیں تو ہمارے کو کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہونا چاہیے, تھک تو جائیں گے. اس لیے سادھو کا سنگ بہت مہتوپورن ہے. بھکتوں کا سنگ نہیں ہوگا تو ہمارا جب تب آگے نہیں چل پائے گا. بھرت مہاراج کا بہت بڑا اچھا سنگ ہوتا تو ہرن میں اتنی آسکتی نہیں ہوتی, اور اس سنگ میں زیادہ آسکت ہوتے, یہ اکیلے رہ رہے تھے ایسے لکھا ہے. اکیلے رہا, اکیلے اگر آدمی رہے گا تو وہ تو اکتا جائے جب سے, اور ہرن میں بھی آسکتی ہو جائے, یہ بھی دکھنے کو ملا. اس لیے سادھو سنگ میں رہنے سے, سنگ کیا ہوتا ہے, سنگ ہمارے کو گرنے سے بچاتا ہے, سنگ ہم کو گرنے سے بچاتا. اب چار آدمی ایک جگہ سوئے ہوئے اور صبح سب کو اٹھنا ہے تو ایک اٹھ گیا تو تین کو اٹھا لے گا نا, اٹھو, اکیلا ہوا نہیں اٹھائے گا تو پھر کیا کرو گے. کوئی کہ نہیں نہیں ہمارا تو شاستر ہی گرو ہے, ہم کو گرو کی ضرورت نہیں ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ایسے ہی کہتے ہیں. گھر میں استری اور پرش کا جھگڑا ہو گیا, تین چار دن بات چیت بند ہو گئی. یہ تو سب گھروں میں ہوتا ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے, لیکن گھر میں جھگڑے ہونا ایسے ہے جیسے بے ٹائم کے بادل اوپر آنا. اس برسات ہوتی نہیں, اسے ایسے گڑ گڑ کرتے ہیں. صرف چانکیہ پنڈت نے ایسے کہا ہے, پربھوپاد نے ایسے شکشا دی ہے کہ گرست میں جھگڑا ہونے کا مطلب بیکار بے ٹائم کے بادل کا گجگوڑ ہونا, برسات کچھ بھی ہونے والی نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی کل ٹھیک ہو جائیں گے, اس لیے اس کی چنتا نہیں کرنی چاہیے. اور پھر کہا تیسرے دن صبح سویلے 5:30 بجے والی گاڑی سے پتی دیو کو مانو جانا تھا یہاں سے بامبے. ابھی گھر میں بات چیت تو تھی نہیں, تو چٹھی کے اوپر لکھا مجھے 4 بجے اٹھانا, 4:30 بجے والی گاڑی سے جانا ہے, اور چٹھی پتنی کے سامنے رکھ دی. وہ بیچاری سمجھا اب تو ہم راضی نامہ ہو گیا, چٹھی لکھی ہوگی, کوئی پریم کا پتر ہوگا. کھول کے پڑھا, لکھا ہے 4:30 بجے اٹھانا. بولا ابھی بھی آدیش دے رہا ہے, ابھی بھی حکم چلا رہا ہے, لیکن پھر بھی مریادا میں تھی پتنی بیچاری. 4 بجے اٹھی, اٹھ کے بچوں کے پڑھنے کے کمرے سے بڑا ڈرائنگ کا پیپر لیا, مارکر لیا, لکھا پتی دیو 4 بج رہے ہیں اٹھ جائیے, اور لکھ کے پتی دیو کے بیڈ کے سامنے چپکا دیا اور جا کے سو گئی. پتی دیو صبح اٹھا 9:30 بجے, سورج مکھی تھا, اٹھتے ہی ایسے میری گاڑی نکل گئی, تم کو بولا تھا مجھے اٹھانا, بولا کب بولا تھا, بولا لکھ کے نہیں دے رہا, بولو لکھ کے میں نے بھی رکھا ہے دیکھو, اور 4 بجے لگایا ہے. تو لکھا ہوا تم کو اٹھا تو نہیں سکتا ہے, تو شاستر میں لکھا ہوا ہے لیکن اٹھایا کیسے آپ کو. میں بولا کب, بولا کب آپ نے, آپ نے لکھ کے دیا تھا, میں نے لکھ کے رکھ دیا, گاڑی تو چھوٹ گئی نا. تو ایسے سنگ میں رہیں گے تو کوئی اٹھا لے گا, اکیلے رہیں گے تو پچھتاتے رہیں گے. اب بھرت مہاراج پچھتا رہے ہیں, لیکن جب برہمن کے گھر میں جنم ہوا تو انہوں نے نرنے کیا کہ اب سنسار میں پھنسنا ہی نہیں ہے, पिताजी ने ब्राह्मण से शिक्षा कर देने के लिए प्रयास किया, 3 महीना गायत्री मंत्र पढ़ाना शुरू किया, ओम भूर कहना नहीं आया। सारे बच्चे सीख लिए, कुछ सीखने को तैयार नहीं, सीख के क्या करे, पहले सब कुछ जानता था। अब बोलेगा मंत्र बोलेगा तो हमारी तरह कोई बुला के बच्चों को यहाँ पढ़ाएगा, फिर लोग बच्चे बाहर कहेंगे कैसे हमने पढ़ा था, आसक्ति हो जाएगी ना। और पिताजी अगर कहे कि तुम बेटा ऐसे करना, हाथ धो के फिर भोजन करना, तो वो हाथ ऐसे मिट्टी में लगा के फिर आके भोजन करे, उल्टा बोले बेटा शौचालय में से वापस आके फिर हाथ धोना चाहिए, तो पहले हाथ धो के फिर शौचालय में जाए, ऐसा उल्टा करे कि बाप थक गया कि ये कभी सुधरने वाला नहीं है, बाप को पता नहीं था कि बाप तो मर ही गया। लेकिन बाकी जो 8-9 भाई थे और उनका विवाह हुआ, उनकी पत्नी आई, उन्होंने कहा ये इतना सारा मोटा तकड़ा रोज खाता है घर का माल, हमारे बच्चों का सारा काम तो कुछ नहीं करता है, इसका क्या करेंगे, तो रूखी सूखी रोटी दें, जला हुआ नीचे का जो है चावल दे दें जले हुए, लेकिन वो को जो भी दे वो खा लें और चले जाएं, मतलब गैया चराने जाओ तो गैया चराने चले जाएं। और ऐसे उनका जीवन हो गया जैसे जड़वत, जड़ का मतलब जड़ कहते जैसे टेबल पड़ा है इसकी तरह, डंडे की तरह है, तो महाराज ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ लेकिन अपना जीवन जड़वत बना दिया।
अभी नहीं आने,
बाद में आएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। टाइम मेरे ख्याल में किसी ने मेरे पास ये घड़ी रखी है, टाइम 10 बज रहा है। तो जड़भरत महाराज को कुछ वो नहीं खिला रहे थे उनके घर वाले, हम नहीं चाहते हैं कि उनकी तरह आपको भी नहीं खिलाएं, आपके लिए प्रसाद का प्रबंध है, ताजा गर्म, न जला है और न सूखा है, आप उसको खा के आनंद लीजिए। यहाँ से जड़भरत आगे 2 स्थानों में जड़भरत का प्रसंग आता है, पकड़ के जाते हैं डाकू और फिर सिंधु सुवेर देश का महाराज रघुगुण की पालकी को उठवाते हैं, और फिर एक बार ही केवल बोला है महाराज भरत, और जो एक बार बोला है उसने एक महान राजा के जीवन को बदल दिया है। इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे, कल का प्रोग्राम कैसे है ये आप अनाउंसमेंट कीजिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। 1 घंटा 12 मिनट का बारह मिनट ही है ना, 32 मिनट है, 12।
ये हमारे जो भारत देश का नाम जो 3 मिनटों में था, वो 3 मिनटों का नाम एक शकुन चला था।
हाँ, उस भरत का नाम भी बाद में, उस भरत के नाम से भी भारतवर्ष पहले ही था, लेकिन उस कुल के अंदर जो है उनको भारतवंशी कहते हैं। अर्जुन को इसलिए भगवद गीता में भरतवंशी कहा जाए, वो शकुंतला के बेटे भरत के पीछे है, और ये ऋषभदेव के बेटे भरत के पीछे। भागवत में लिखा है कि इस देश का नाम जो पहले अजनाब वर्ष था उसको भारतवर्ष कहने लगे, तो वो भी भागवत, वो भी भरत महाराज हुए हैं, बड़े प्रतापी हुए हैं। उन्होंने गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक सैकड़ों यज्ञ किए थे अश्वमेध, और जमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक यज्ञ किए थे, तो उनको उनने बहुत बड़ा, उनका भी वर्णन है 9वें स्कंद श्रीमद् भागवत में, महाराज भरत का, शकुंतला के जो पुत्र थे।